ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के दूसरा अध्याय के 45वां श्लोक का चर्चा करेंगे, पाठ करेंगे। न श्रुता नानुभक्तायम् मुख्योऽपि यत्र महानशुः अस्तिहिन्द्रियवानात्मा स चान्य प्राणदेहयोः। शब्दार्थ नहीं, श्रोता सुनने वाला, ना नहीं, अनुवक्ता बोलने वाला, अयम यह, मुख्यः मुख्य, अपि यद्यपि, अत्र इस शरीर में, महान महान, असु प्राणवायु, यह जो, तू लेकिन, यह इस शरीर में, इंद्रियवान समस्त इंद्रियों से युक्त, आत्मा आत्मा, स वह, च तथा, अन्य भिन्न, प्राणदेहयोः प्राणवायु तथा भौतिक शरीर से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहां तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता, क्योंकि वास्तविक निर्देशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तात्पर्य भगवद गीता में 15वां अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पष्ट कहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित है, देहिनस्मिन् यथा देहे, किंतु वह इंद्रियों मन इत्यादि के माध्यम से कर्म करने वाला प्रधान पुरुष नहीं है। आत्मा तो परमात्मा के ही सहयोग से कार्य कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही उसे कर्म करने या न करने का निर्देश देता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कोई उनकी स्वीकृति के बिना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उपद्रष्टा तथा अनुमंता अर्थात साखी तथा अनुमति देने वाला दोनों है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ध्यान से अध्ययन करता है वही इस असली ज्ञान को समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही व्यष्टि आत्मा या जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के संचालक एवं उन कार्यों के फलों के नियामक है। यद्यपि जीवात्मा में इंद्रिय होती है किंतु वह वास्तविक स्वामी नहीं होता, स्वामी तो परमात्मा होते हैं। फलस्वरूप परमात्मा को ऋषिकेश कहा गया है और परमात्मा के प्रत्येक और परमात्मा को यही परमात्मा जीवात्मा को यही परामर्श देते हैं कि उनकी शरण ग्रहण करके सुखी बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस प्रकार वह अमर होकर वैकुंठ धाम को जा सकता है जहां उसे नित्य ज्ञानमय एवं आनंदमय जीवन की परम सफलता प्राप्त होगी। निष्कर्ष यह है कि जीवात्मा शरीर इंद्रियां प्राण तथा शरीर के भीतर की वायु से भिन्न है और उसके ऊपर परमात्मा होता है जो उसके सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है वह शरीर के भीतर सुखपूर्वक निवास करता है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग इस प्रकार चल रहा है कि हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरणाक्ष का मृत्यु हो चुका है तो उनको लेकर के उनके परिवार उनके पत्नी पुत्र आदि शोक कर रहे थे, उनको उपदेश दे रहे हैं। उनके उपदेश में उन्होंने एक कहानी बताते हैं उनको शांत करने के लिए। वो कहानी था उशिनर प्रदेश की राजा सुयज्ञ की कथा। वो राजा सुयज्ञ युद्ध में मर चुके हैं, उनके लाश पड़ा हुआ है और उनके पत्नियां उन लाश को पकड़ करके रो रहे हैं। शाम हो गया, उनको क्रियाकर्म दाह क्रिया करने के लिए नहीं छोड़ रहे, रो रहे पिट पिट करके मथा पिट कर। तो हुआ क्या, जमराज एक बालक रूप में आए और उनके पास जा करके ऐसे बोले, उनको सुना सुना करके दिखा करके कि अरे कितने मूर्ख हैं, ये रो रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो आज के श्लोक ये जमराज के बोला हुआ श्लोक बालक रूप में बोल रहे हैं, सुयज्ञ रूपी राजा जो उनका लाश पड़ा हुआ है, उनके पत्नियां जो उनको लाश को मुर्दे को पकड़ कर रो रहे हैं, उन्हीं को सांत्वना देने के लिए ये तत्व पूरक श्लोक वो बोल रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। उन्होंने उनको समझाते हुए उनको डांटते हुए बोले, अरे कैसे मूर्ख है आप लोग, इसी को पकड़ कर रोने से क्या होगा। अब जिस लाश को पकड़ करके सुयज्ञ के शरीर को पकड़ कर आप रो रहे हैं वो तो पहले भी आपके पास था, अभी भी आपके सामने सोया हुआ है, क्यों रो रहे हैं आपने। तो बोलेंगे कि नहीं जी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो तो अभी नहीं है, वो चले गए। कौन चला गया? ना वो तो गए, हमारे पति देव गए, ये तो उनका लाश पड़ा हुआ है, हम रो रहे हैं, हमको छोड़ के चले गए। बोले अच्छा पति देव के कैसे पहचान था, उनका आईडी क्या था, फोटो आईडी यही था ना? ना वो था, लेकिन लेकिन क्या ना, वो बोलते थे, हम कोई बात करने से हमको प्रत्युत्तर करते थे, देखते थे हमारे और सुनते थे, लेकिन ये हम चिल्ला रहे रो रहे कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए है नहीं, वो होते तो हमारे साथ बातचीत करते। तो उसी को बात को कह करके उनका मान्यता था, शरीर में जो प्राण होता है, प्राणियों के अंदर जो प्राण होता है, प्राण भाई बोलते हैं, प्राण जब तक शरीर में रहता है तब सुनता है, देखता है, बोलता है, श्रोता, वक्ता, दृष्टा माना जाता है। और जब प्राण निकल गया, जब तक प्राण था तब तक तो गाड़ी चल रहा था, प्राण निकल गया तो सो गया, अभिलाष बन गया। अब इसलिए प्राण ही जो, तो इसी को बोलते हुए जमराज कहते, बोले नहीं ये भी मूर्खता है। बोले क्या ना, आप लोग का जो मान्यता है, जो आप मानते हैं कि प्राण ही प्राणियों के शरीर में रह करके श्रोता, वक्ता, दृष्टा के रूप में कार्य कर रहे, बोले वो भी गलत है। ये कैसे गलत है, प्राणी तो है, तब तो प्राण निकल गया, चला गया, प्राण वायु चला गया, बोलते प्राण पखेर उड़ गया, प्राण बोलते ना ना ना, बोले ये मैं मानता हूं कि प्राण वायु, प्राण जो है ये देह और इंद्रिय के संचालक है, उनके हेतु है, जो भी शरीर के और इंद्रिय के जो चेष्टाएं, जो क्रियाएं हैं, उसका हेतु रूप में, उसके कारण के रूप में प्राण ही है। और पंच प्राण से मुख्य जो पंच प्राण है, उसमें से मुख्य प्राण, प्राण वायु जिसको कहते हैं जो मुख्य, वो उसके हेतु होने पर भी वो श्रोता, वक्ता, दृष्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ है, अचेतन है। बोले कि भैया ऐसे कैसे मान ले? बोले अच्छा जब कभी आप लोग सो जाते हैं गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में, प्राण रहता है कि नहीं? हम फिर जगते हैं, प्राण किसे नहीं रहता, प्राण रहता है, लेकिन वो सुनता, देखता, कुछ करता है क्या, बोलता है ना? नहीं, ठप। जब प्राण रहकर भी श्रोता, वक्ता, दृष्टा नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, तो अभी कैसे? तो इसलिए प्राण वास्तविक श्रोता देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है, अचेत वस्तु का अंदर है, जान कैसे आएगा इसको करने के लिए, वो अचेतन जड़ है प्राण। तो फिर कौन? प्राणी नहीं करता ना, वो जड़ वस्तु नहीं। हम आप जो मानते हैं कि प्राणी ये सब कारण है करके, बोले ये नहीं है, फिर कौन है भैया? बोलते नहीं, ये प्राणियों में जो देह इंद्रिय को चलाने वाले, उनके कारणभूत जो प्राण है वो भी नहीं चलाता है, तो फिर कौन? बोले एक और जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिनको लगता है कि प्रतीत होता है कि ये देह इंद्रिय से उनका है, हम है, हम बोलते ना, हम देह आत्मबुद्धि करते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, हम जीवात्मा को देह रूप में देखते हैं। बोले प्रतीति होता है कि हमको ये देह, हम जीवात्मा है कर, बोले वो भी नहीं है, वो और सूक्ष्म है, प्राण से भी सूक्ष्म है। यद्यपि प्राण शरीर से, इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इसलिए उसको प्रधान कहा गया। इंद्रियों से प्राण, शरीर से श्रेष्ठ होकर भी प्राण और उसका हेतु संचालन करते हुए भी वो भी जड़ है, अचेतन है। उसके परे एक और है, ये समस्त प्राण को धारण करता है, इंद्रियों को, देह को, सभी के संबंध रखने वाले इंद्रियवान, इसलिए ही इसमें आया ना, यस्तु इह, इस शरीर में यह इंद्रियवान आत्मा, इंद्रियवान, इंद्रिय वाला लगता है कौन? आत्मा, लेकिन लगता है इंद्रियवान, लेकिन है ही उनका इंद्रिय, वो तो बिल्कुल अलग है। और वो ही देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, क्योंकि वो चेतन है। कोई चेतन चीज तो बोलेगा, देखेगा, सुनेगा ना, ये प्राण तो अचेतन है, वो चेतन है, लेकिन ये उससे अलग है। किससे अलग है? देह से अलग है, प्राण से अलग है, इंद्रिय से अलग है। जो हम मानते इंद्रियवान, वो इंद्रियवान फिंद्रवान नहीं है। उनका क्या होता है? वो तो बिल्कुल असंग अयम पुरुषः, वो बिल्कुल उसमें है ही नहीं, वो अलग चीज है। तो और वो ये सब करता है। आगे चल करके प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं कि बोले ये भी नहीं है, वो भी सस्ता है कि आत्मा जीवात्मा ठीक है, यहां तक पहुंच के जीवात्मा ही कारण है, वो चेतन वस्तु है। बोले ये चेतन होते हुए भी, वो श्रोता वक्ता दृष्टा होते हुए भी, उनका देखना सुनना बोलना भी उनके द्वारा नहीं हो सकता अगर ऊपर से सैंक्शन नहीं होता। वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी परमात्मा है। बोले वो ऊपर बैठे, वो पावर हाउस है, वहां से आता है। जो साधारण बुद्धि रखते हैं, साधारण मनुष्य देखेंगे ये स्विच है, इधर स्विच ऑन कर दिया लाइट जल गया, अब कर दिया बुझ गया। बोले यहीं से है सब कुछ, यही तो है और क्या, स्विच बोर्ड स्विच। बोले ये नहीं बाबा, आप लोग को पता नहीं है, जो इलेक्ट्रिशियन वो जानते हैं, स्विच ऑपन होता है उसके अंदर ये किसी को टच करता है तो वहां से वो जाता है, वायर से करंट कमांड जाता है, जाकर उनके पास पहुंचता है, फिर उसका करंट पावर हाउस से कनेक्टेड होता तब जाकर बल्ब जलता है। लेकिन इतने जल्दी होता है हमको पता नहीं चलता। जैसे आजकल प्राय कोई नहीं है यहां जिनके पास मोबाइल ना हो, ये तो है। भले और कुछ ना हो लेकिन ये तो अवश्य ही होगा। भाई यहां बैठने वाला क्यों, पूरे देश में जिनको बोलना और पढ़ना आ गया है उनके पास मोबाइल ना हो। हमें देखा कई परिवार में, अच्छे खासे परिवार में बच्चे को दिखाते हैं, बोलता है क्यों खिलाएंगे करो, तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो बोलते हैं वो आपसे दिखा देते हैं, बोले फोटो देखो ये करो, यूट्यूब भी दिखा देते हैं उनको, सब करते हैं बस। मैंने बच्चों को पालन करने वाला, छोटे छोटे बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखे हैं, चलना भी नहीं सीखे, उनको भी उनका भी मोबाइल होता है। और बड़ों को तो कहना है क्या है ना। और जो मर रहे हैं वेंटिलेटर में पड़े, वो भी देख रहे हो। मैंने इतने आवश्यक वस्तु हो चुका है और वो सबके पास है। उनको हम देखते हैं कि इसमें से सब आता है, फोटो आता है, बात आता है, मैसेज आता है, जाता है, आवाज करता है, सब उसमें होता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, जड़ है, ये जड़ है। उसी के अंदर कोई एप्लीकेशन डाला तभी तो हो रहा है ना। जो एप्लीकेशन नहीं है, प्लेन खरीद के लाओ, डलेगा क्या? नहीं, उसमें ऐप्स डालना होता है, डाउनलोड करना होता है यूट्यूब से। जो एप्लीकेशन डालेंगे वही काम करेगा। अरे मेरा ये दिखाता, तुम्हारा क्यों देखा, तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं है, डालो। तो ऐप्स डालना होता है तो बोलेंगे कि अच्छा एप्लीकेशन ही कारण है। अरे कितने भी एप्लीकेशन डाल दो बैटरी नहीं है, चलेगा क्या? बिल्कुल टिप टप लाओ, सारे कंप्लीट एप्लीकेशन डालो, सब डाल दिया, आता ही नहीं। तुम सोच रहे थे मोबाइल करता है काम, मोबाइल का सारे यंत्र है, एप्लीकेशन भी डाल दिया, लेकिन बैटरी अगर डाउन, खत्म, नहीं चलेगा। अच्छा, बैटरी ही उसका पीछे शक्ति है, वही करता है सब, हेतु तो वही है। वो ना रहे तो इस सारे सेट गैजेट बेकार, बैटरी नहीं है। अरे कोई दूसरा बैटरी कहीं से ला के लगा दो, नहीं उसी का जो बैटरी वही लगेगा। और उसको बैटरी ला के लगा दो, अगर बैटरी में चार्ज नहीं है, नया बैटरी खरीद के लगा दे, काम करेगा? नहीं, उसको चार्ज कराना पड़ेगा। जो बैटरी सचमुच उसको जीवित कराता है, मोबाइल को एक्टिव कराता है, उसके अंदर प्राण संचार करता है, दिखाई पड़ता है बैटरी, वो बैटरी भी जड़ है। वो ऐप्स भी जड़ है, मोबाइल तो जड़ है ही है, जो एप्लीकेशन वो भी जड़ है, जो बैटरी के द्वारा संचालित होता है जो मुख्य कारण है वो भी जड़ है, वो भी जड़ है। उसके अंदर क्रिया शक्ति संचार किया जाता है, किससे? बोलते हैं प्लग में लगाया था मैंने, तब दो घंटा फुल चार्ज है, 100% पूरा डंडी दिखाता है, फुल चार्ज हो गए। बोले आप सोचते हो आहा हा कारण तो उपलब्ध है, वहीं से चार्ज हो गया बैटरी, प्रियासक्त जीवन आ गया, जान आ गया उसमें, तब चलता है वो भी जड़ है, वो भी जड़ है प्लग, क्योंकि वहां से भी अगर यहां से स्विच ऑफ कर दो प्लग में नहीं आएगा, तो कितने भी लगाकर दो दो दिन रखो, दो घंटा के दो दिन भी लगाकर रखो चार्ज होगा नहीं, प्लग में जब करंट फ्लो नहीं करता तो भी चार्ज नहीं होगा, तो भी किससे कंट्रोल होता है, उसको भी जाओ उसको भी ऑन कर दो, अगर लोड सेटिंग है वो पावर ही नहीं है तो क्या कर सकता, किसने उस मेन स्विच जाएगा अपन धड़ 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 करो कुछ करो, कुछ भी करने से मारपीट करने से नहीं होगा, क्योंकि वो भी कनेक्टेड और कहीं से है, वो भी और कहीं से कनेक्टेड है, वो भी और कहीं से कनेक्टेड है, होते होते मूलतः जाएंगे जो विद्युत पावर हाउस जहां से प्रोडक्ट होकर आता है वहां तक जाना पड़ेगा, वहां से मेन सप्लाई होता है। और कितने भाया मीडिया होकर के आता है हो, ये जो विद्युत शक्ति हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता ये आप लोग को पता नहीं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या तापस विद्युत है, ये भी नहीं पता हमको, वो कहां से आता है पता नहीं, ये यहां कहीं ये मथुरा वृंदावन जो मिलता है यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जहां से विद्युत लाता है, ये कौन सा किस प्रकार का शक्ति वो कहां से लाता है ये भी नहीं पता हमको, कैसे लाता है वो, वहां से ला करके फिर वहां रखता है, फिर देता है, फिर देता है, कितने 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 होकर आता है, तो जाएंगे वहां पर तो वहां से पता चलेगा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, वहां से वो ला करके यहां देते हैं, तब जाकर होता है, इतने कारण के पीछे हुए। और वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के जो तापस विद्युत केंद्र या जल से जो बनाया गया टर्बाइन से, वो भी जड़ है, वो जितने मशीन घुमाता है और जो भी हो पानी से निकलता है वो भी सब जड़ पदार्थ है, वो पानी भी जड़ है, वो टर्बाइन भी जड़ है, वो सब जड़ है, फिर कहां शक्ति आता है भाई, उनके अंदर कुछ शक्ति है और जो उनको घुमाने वाला भी कोई घुमाने का उनको बुद्धि दिया तभी तो जाकर के आया, ये सबका पीछे परम कारण रूप से और कोई है। अब हम तो ये बैटरी को भले देख लें, बैटरी के जो चार्ज करता करंट को देखा आपने नहीं, अगर कोई इंडिकेटर बत्ती जलता है लाल तो है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता, कैसे बाहर से दिखता है, और वो करंट को जहां सप्लाई आता है मेन स्विच, वो ये सब भले नहीं है लेकिन वो सब जड़ है, सारे जड़ वस्तु है, उसके पीछे जहां पे करंट सप्लाई होता है वो भी, यद्यपि बोलते हैं यहीं से पावर हाउस मेन पावर हाउस होता है लेकिन वो भी नहीं है, उसके पीछे भी कोई और है। तो इस प्रकार जमराज उनको समझाते हैं कि आप लोग जो उस लाश को पकड़ के रो रहे हैं और आप लोग के मान्यता है कि हमारे पतिदेव प्राण निकल गया, प्राण नहीं है इसलिए अभी बोलते नहीं सुनते नहीं हम रो रहे हैं, प्राणहीन हो गए, बोलते प्राणहीन हो गए, प्राण था प्राण चला गया, प्राण भी जड़ वस्तु था, लेकिन आप जो बोलते हैं कि पतिदेव चले गए, पतिदेव तो आपके सामने ही जिसको पकड़ के रो रहे हैं, बोले नहीं ये पति नहीं थे, बोले क्यों आपके पति क्या बात करते हैं, पति हमारे पति हम नहीं थे, बोले जिसको आप देखे थे जो आपसे बात कर रहे थे जो आपको सुन रहे थे प्रेम कर रहे थे उनको वो कौन है थोड़ा बताओ ना, वो तो पति थे देखने में कैसे थे, नहीं तो है इसी को तो देखे थे, क्योंकि जो वक्ता श्रोता दृष्टा इसी को ना तो कोई आंख में देख सकता है, असंभव है, इस चर्म चक्षु से उस दृष्टा को उस श्रोता को देखा नहीं जा सकता, वो इतने सूक्ष्म है जो आत्मा है, कोई दिखाते हैं उसको कुछ नहीं पता, भले मान ले बोल ले लेकिन देखा नहीं, बोलते ये अदृश्य रूप में इतने सूक्ष्म आत्मा वही मूल कारण है, क्यों, क्योंकि एकमात्र चेतन वस्तु वही ये शरीर में है, बाकी शरीर में समुदाय जड़ है, जो हड्डी पर मांस रुधिर ये तो सब जड़ है ही है, मतलब जो डेड बॉडी में जिसको बोलते हैं तो लाश हो गया, और लाश के अंदर जो मौजूद है क्या क्या मौजूद है, हाथ पैर जो बाहर इंद्रिय जिसको देते हैं वो तो है ही है, दांत आंख नाक कान जो सब चमड़ी सब तो है, उसके अंदर भी खोलकर देखो जो मांस हड्डी मज्जा आदि आदि अंदर वो भी सब कुछ मौजूद है, लेकिन अब सियार खा जाए आकर कुत्ता खा जाए कुछ नहीं, वो हुत नहीं कर सकता, अब भी हमारा चिटी आ जाने से मसल देंगे उसको, अब जब वो शक्ति निकल जाए प्राण चिटी क्या छोटा कुत्ता भी आकर खा जाए आग में डाल देते जला देते हैं, अभी आग के पास नहीं जा सकते, लेकिन तो इसे पूरा डेड मैटर हो जाता है, तो बोलते हैं ये तो अब देखते हैं तो डेड है, लेकिन जो दिखता भी नहीं, जो आपके मन है, जो आपका बुद्धि है, जो आपके प्राणवायु है, और भी जो सब है वो भी जड़ है, भले दिखाई नहीं पड़ता, ये सब दिखाई पड़ता है स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में भी है, वो भी जड़ है, वो भी कारण नहीं है, यद्यपि लगता है कि इनके कारण से इंद्रिय चलता है, सब चेष्टाएं करते हैं एक्टिवेट एक्टिव होते हैं, लेकिन वो भी कारण नहीं क्योंकि जड़ है, कमांडिंग अथॉरिटी उनका नहीं है। अरे कोई मशीन जैसे कोई बोले बैटरी, हाँ बैटरी मोबाइल को चार्ज कर, अरे बैटरी के चार्ज डाउन हो जाए बैटरी अपने आप चार्जिंग हो सकता क्या, नहीं, वो देखेगा कोई देखने वाला, अरे डंडी खत्म हो गया डाउन हो रहा है लगाओ चार्ज में, कि पुराना हो गया कोई रिप्लेस करो उसको, कोई और भी उसको देखने वाला होता है, बैटरी अपने आप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये प्राण वायु को भी संचालन, प्राणवायु सबको करता है संचालन हेतु है, उसको भी संचालन उसको भी हेतु रूप में एक और रहता है जिनको कहते हैं जीवात्मा। ये जो आप मानते हैं कि उनके प्राण निकल गए, वो प्राण निकल गया प्राण भी कोई मतलब नहीं, उससे क्या कारण है, बोले उसके जीवात्मा है वो, ना तो कभी मरता है ना जन्म होता है, वो तो चेतन वस्तु है और चेतन भी नित्य चेतन है, अविनाशी को मरता भी नहीं कभी, ये तो बेचारा अपने कर्म के हिसाब से ये शरीर लाया था, और जब लाया था उसी दिन मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट उसी दिन प्रिंट आउट होकर आता है उसी में, है ना, हम जितने प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है हमको पता नहीं है, हर कोई प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें दो डेट लिखा रहता है ना स्टाम्प, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये जितने प्रोडक्ट हम बैठे हैं और जितने नहीं भी बैठे हैं सब सभी के अंदर दो डेट प्रिंट आउट है लिखा गया स्टाम्प लगा गया, भाई ये आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट है जिसको हम हैप्पी बर्थडे करके मनाते हैं, और एक्सपायरी डेट भी ड्यू डेट लिखा है उसमें, एक इधर नहीं जा सकते वो डेट फिक्स है एक्सपायर हो जाए, हम उसको देख नहीं पा सकें तो हमारा कमी है, उनका थोड़ी ना कमी है, डेट फिक्स है, तो आपने कर्म के अनुसार वो आपने ड्यू डेट लेकर आया जितने दिन टिकेगा इधर, अरे टिकेगा मतलब ये तो कहते हैं शास्त्र में वो जो एक्सपायरी डेट गिनती है, बोलते हैं कहीं कहीं नहीं उनका जीवन अवधि बढ़ गया, बोले ऐसा कुछ नहीं होता, बोले इतने परफेक्टली ऊपर वाला ऐसे अरेंजमेंट किया है, बोलता है कि वो गिनती करता है एक्सपायरी डेट किस हिसाब से, सांस के हिसाब से, इतने सांस ले सकता है उससे एक ज्यादा सांस नहीं ले सकता, सांस की गिनती होता है जो हम सांस लेते ना छोड़ते उसकी गिनती होता है श्वास प्रश्वास, वो जितने पूरा हो जाएगा संख्या दैट्स इट, और एक सांस अंदर नहीं जाएगा कि बाहर आए खत्म, सांस की गिनती होता है। वो जो कभी कभी हम सोचते हैं कि जोगीराज तो बोलते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राणायाम आदि करते हैं, जैसे हम लोग दो तीन सेकंड में प्राण श्वास छोड़ते हैं, दो तीन प्राण ले लेते हैं जल्दी जल्दी श्वास श्वास चलता, तो इसलिए हमारा परमायु इसी हिसाब से काउंट होता है, लेकिन जो उनको रोक कर रखते हैं वो एक दो मिनट रोक देते हैं फिर दो मिनट छोड़ते हैं, जो इनका प्राण आयाम जो करते हैं इसकर, तो उनका गिनती थोड़ा लेट में होगा, गिनती तो हुई है इतना इतने ही सांस लेना है, लेकिन वो सांस को थोड़ा लेट में छोड़ता है लेट में लेता है तो उसको थोड़ा लेट में कंप्लीट होगा उसका गिनती, लेकिन जो फास्ट करता है तो फास्ट गिनती हो जाएगा पूरा हो जाएगा फास्ट मर जाएगा, गिनती तो इतना ही है इसी गिनती के हिसाब से चलता है, तो इसी को जो आप थोड़ा एक्सरसाइज करके लेट कर देंगे तो लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ने जैसा लगता है, लेकिन बढ़ता लगता नहीं, काउंटिंग तो सांस ही है, इतना काउंट हुआ नहीं वही होगा, काउंटिंग में जितना लेट करेंगे अपने हिसाब से, तो इतने एक्यूरेटली जो अरेंज किया गया है, तो अरेंज करने वाला भी तो कोई है। बोले ये जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार इस देह को इसी परिस्थिति में इस प्रकार से धारण किया है और इस इंद्रिय को धारण किया है, धारण करके इंद्रियवान कहता है कि मैं मेरा इंद्रिय से मैं करता हूं। जीवात्मा को इंद्रियवान कहा गया इधर, ये सोचता है कि मेरे संबंध इंद्रिय देह से है, मैं ही मेरा ही इंद्रिय है, मैं ही सब कर रहा हूं। बोले नहीं, वो भी नहीं कर रहे, उनको कुछ समय के लिए यूज करने के लिए दिया गया, और क्या यूज करेगा ना, वो तो पहले से फिक्स है, तो इतना सुख भोगेगा इतने दुख भोगेगा, इसके लिए दिया गया खाली होंगे नहीं, कुछ करने के लिए भी सुविधा दिया गया है, वो करना तो क्या करेगा वही देखता है। अगर तू ऐसा कुछ करता है इस सुख को दुख भोगते हुए भी, अगर जब तक किस प्राण रहता अपने जीवित शक्ति रहता है, प्राण वायु रहता है, अगर कुछ और सही कर्म किया तो इस चक्र से निकल करके सदा के लिए भगवत धाम जा सकते हैं, सदा के लिए जा सकते हैं, ये सुविधा भी दिया गया है। ये सुविधा क्या है, प्रभुपाद जी तत्व कहते हैं कि वो परमात्मा बैठकर बोलता है, बोले बेटा क्यों मूर्ख थे, इसी जाते इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत कर, क्या करना, मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, बाकी सब छोड़, सब छोड़कर मेरे शरण में आ। बोलते हैं आपको मैं देखता नहीं सुनता नहीं, मैं कैसे आपके शरण में जाऊं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ये है वो है, उनके साथ रहूं, बस उनको मानता नहीं, वो हमेशा साथ में रह करके परामर्श देते हैं, साधु गुरु शास्त्र के द्वारा परामर्श देते हैं, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते, कर नहीं पाते, और सुख दुख भोग करके, और वो भी सुख दुख कैसे भोगते हैं, जीवात्मा सोचता है, बोले ना, क्योंकि परमात्मा भी उसको एक्टिवेट करता है, जीवात्मा चेतन है लेकिन परम चेतन नहीं है, वो जीवात्मा के अंदर जो देखने का जो दृष्टा है, श्रोता है, वक्ता है जीवात्मा, तो उसका अंदर देखने के सुनने के बोलने के शक्ति आया कहां से, हाँ वो सप्लाई पावर उसको और कोई है, और वो केवल देता नहीं है, वो भूतात्मा भूत भावन तो है, प्रकाश उनसे आता है, लेकिन इसके अलावा बोलते हैं मैं भी उनके साथ बैठता हूं, मेरा आईडी अलग है, क्यों बैठते हैं, क्या करते हैं, न उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, मैं ही उपदेश देता हूं, उपद्रष्टा हूं, बिल्कुल बाजू में खड़ा होकर देखता हूं, मुझे नहीं भूल सकता, आप नहीं देखे, मैं बिल्कुल आपके साथ था, अंदर भी बाहर भी, उपद्रष्टा देखने वाला, बिल्कुल नजदीक से ठीक ठीक से देखते हैं, उनको भी नहीं कि आईसाइट खराब हो जाए उनका, नो नो नो, ऐसा नहीं, उपद्रष्टा अनुमंता सैंक्शनिंग अथॉरिटी, भाई उनके अनुमति का बिना कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका सैंक्शन ना हो तो। कभी विचार आता है अगर वही देख रहे हैं हमको नजदीक से, और कोई काम करने के लिए अनुमति भी दे रहे हैं, और हमारा हितेशी है, माँ बाप वही हैं, हमारा हमेशा कल्याण चाहते हैं, तो हम के गड्ढे में जाते हैं, क्यों रोक नहीं दिया, और रुकना चाहिए भाई उनको, ये तो ठीक नहीं कर रहे, उनको पता है मैं मूर्ख हूं, मेरा ज्ञान नहीं, अज्ञानी हूं, ना समझ हूं, और ऐसे गलती कर रहा हूं, दुख भोग रहा हूं, तो मुझे बचा। बोले तुझे बचाना, तू तेरे जितना चिंता है तुझे बचाने के लिए, तेरे से करोड़ गुना चिंता तो कर ही रहे हैं। बोले कैसे मान लूज करते हैं, बोले देखो तुम्हारा जो भी पति पत्नी मित्र बंधु भाई तुम्हारे रहते हैं, समझाते बुझाते हैं, कोई तेरा साथ हमेशा रहते हैं, दो चार बार बोल दिए, दस बार बोल दिए, थोड़ा मदद किए, नहीं छोड़ते। बोले ओ तो तुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं कभी, आप इस मनुष्य शरीर में चाहे मेल बॉडी में रहो, फीमेल बॉडी में रहो, बच्चे बॉडी में रहो, बूढ़े बॉडी में रहो, वेंटिलेटर में रहो, किसी में रहो, अगर यहां से छोड़ करके कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े किसी में चले जाओ, वो छोड़ते हैं आपको नहीं, छोड़ते नहीं, और एक आधे सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते, नो नॉट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हमेशा। बोले क्यों, जब कोई जरूरत नहीं, बोले ना उनको कोई आवश्यकता नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, केवल एक ही मतलब है कि वो मानते हैं कि ये मेरा है। ये दुख होता है, दुखी भक्ता मेरे पास आ जाए केवल करुणा के कारण, उनके अंदर दया और करुणा के कारण इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करके आपके पीछे पड़े हैं, तो नाली के कीड़ा होकर बैठो तब भी तेरे साथ रहेंगे, राजा होकर बैठो तब भी तेरा साथ बैठते हैं, हर प्रकार से चाहते हैं कि तू मेरे पास आ जा आ जा आ जा। वो हम नहीं जाते, वो नहीं जाते फिर क्यों बैठते हैं? बोले यही तो उनका धैर्य, अब क्या करते हैं? बोले कभी ना कभी इतने गाली खाता है, इतने अपमानित होता है, इतने डंडा पड़ता है, इतने दुख भोगता है, कभी हताश होकर बोलेगा दिस इज टू मच, प्रभु हो गया बहुत और नहीं चाहिए। ऐसे उब करके कभी जो पीछे मुड़ेगा संसार की ओर, संबंधियों को और जो सामग्री को मुख मोड़कर जब विमुख होगा, तो मैं तो साड़ी में खड़ा हूं, पकड़ कर ले लूंगा उसको, इसी के लिए मैं साथ में खड़ा हूं, ओनली फॉर दिस बिजनेस, कि कभी ना कभी उब कर तो मेरे ओर थोड़ा मुड़ेगा, बस मेरे ओर मुड़ने से मैं इमीडिएट उसको खींच लूंगा। मुड़ता ही नहीं, मैं साथ में खड़ा हूं भाई, देखो कभी तो कभी ना कभी देखेगा। इसी को धैर्य धारण करके अपेक्षा कर रहे हैं, और किसी का इतना धैर्य नहीं है, क्यों? कोई अपना नहीं है, हो डुप्लीकेट मानते हैं हम, अपना अपने करके मानते हैं, असली में अपना तो वही है। तो इसलिए वो हमेशा साथ रह करके अपेक्षा करते हैं, और वो बोलते भी हम सुन नहीं सकते, तो इसलिए कभी साधु गुरु शास्त्र आत्मा हर प्रकार से प्रेरित करते हैं कि भैया यही है, यही करो यही करो, समझाते हैं, कोई समझ कर आ गया इमीडिएट उसको उठा लेते हैं, नहीं आया फिर भी उनके पीछे लगे रहते, हमेशा वही करते। जब तक ये परमात्मा हमारा साथ रहता है, जब तक हम उनके धाम को चले जाए, वहां जाने से फिर परमात्मा का काम नहीं, वो ड्यूटी पूरा हो गया उनका। तो इसीलिए हम कोई लगे रहते हैं, तो इसी को हम जानना चाहिए, यही है ज्ञान। तो जमराज उनको समझाते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, लाश को पकड़ करके, अरे तुम भी सोच रहे हो कि तुम्हारा था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जितने दिन उनका साथ था इतने दिन, और उनका जितना दिन आपका साथ है इतना दिन पूरा हुआ, हो गए, उसमें क्या है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण शास्त्र में आया है, कभी कभी हम इतने आसक्त हो जाते हैं पुत्र के प्रति, पति के प्रति आसक्त होकर वो चले जाए तो इतने रोते हैं। कभी कभी ऐसे दृष्टांत शास्त्र में देखा गया, भगवान की कोई बड़े बड़े महान पुरुष वो उनको फिर जिला देते हैं, जो लाश को मुर्दा को फिर जिला देते हैं, वो जी कर उठ कर बैठ कर जो बातें करते सुन करके वो सारे आसक्ति खत्म हो जाता है। बोले बाप रे बाप, मैं इसे सुना हूं, जब अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, जानते ना सुभद्रा पुत्र, एक ही बेटा था अभिमन्यु, बाकी तो मार दिया था पहले द्रौपदी से जो पुत्र हुआ था उनको अश्वत्थामा। तो अभिमन्यु इतने प्यारे लड़के थे रूप गुण में भी, भगवान कृष्ण के डायरेक्ट भांजा ही हुआ ना, भांजा कृष्ण, अरे उनको सिखा रहे थे, उनको प्राइवेट होम एजुकेशन देते थे भगवान ने, कृष्ण ने प्यार से अस्त्र शिक्षा आदि बलराम सिखाते थे, भगवान भी और जो जो सिखाना, और दोनों मामा राम कृष्ण दोनों उनको अपना मना करके सिखाते थे पढ़ाते थे, क्योंकि सुभद्रा को खूब प्यार करते थे, है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बीच में बैठा रखे हमेशा, साइड में नहीं रखते। तो उनके बेटे को इतने प्रेम करते थे, खूब उनको सिखाते थे पढ़ाते थे सब कुछ कराते थे, जो जो ट्रेनिंग लेगा कृष्ण बलराम के द्वारा तो कैसा होगा उनका ट्रेनिंग, आप अनुमान लगा सकते हैं। उनके द्वारा ट्रेंड पालित पोषित और अर्जुन सुभद्रा धर्मराज युधिष्ठिर जिनके फादर ग्रैंड फादर है, वो कैसा होगा वो लड़का होनहार। तो वो सुना था जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश किया, कर तो गया, महाबली था, महाविक्रम पराक्रमी था, चला गया जा करके, जाके सब जीत करके ऐसे आना था, जीत तो गया था बाजी, लेकिन अन्याय के द्वारा सात महारथी अन्याय के घिर करके उसको निहत्ता उनको मार डाले, बिल्कुल इलीगली उसको मार डाले, लेकिन मरते समय भी अपने सूर्य प्रकट करके मारा उन्होंने। तो अर्जुन थे नहीं, अर्जुन होते तो कर नहीं सकते थे, अर्जुन को प्लानिंग था, दुर्योधन वो संसप्त कबीरों ने उनको हल्ला करके करते करते ले गए दूर, दूर ले गए अर्जुन का, क्योंकि पक्के क्षत्रिय है ना, उनको कोई बोलेगा कि तुम क्या है इसे गाली दे, लड़ो मेरा साथ, अच्छा अभी लड़ेगा उनके साथ, लड़ते हैं संसप्त तक उनको चैलेंज किया, उनको चैलेंज को क्षत्रिय स्वीकार अवश्य करेगा, छोड़ नहीं सकता। चैलेंज को स्वीकार कर उनके साथ लड़ा, वो भाग गए, बोले अरे भगोड़े कहें कि अरे भाग गए, आओ तो सही देखता हूं। ऐसे कुछ लोग होते ना, हाँ क्या कर लेगा, एक थप्पड़ मारो और एक मारा तो देखा, और दो समय दो मारा के बोले और मारा तो देखे, और बेशरम कहें क्या, बोले ये संसप्त के वीरों ने दुर्योधन के साथ एग्रीमेंट किए थे। दुर्योधन बोला देखो तुमको अर्जुन को हटाना पड़ा, भाई अर्जुन मर जाएंगे, बोले मरना ही नहीं हमको, बोले क्या करें ना भागना है, अरे क्षत्रिय हैं भागेंगे ना, भागना ही है क्योंकि आपको मेरे लिए जी जान देना है ना, हाँ आपके लिए तो आए हैं, तो इसीलिए मेरे लिए आपको अपमान सहन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा पीठ दिखा कर, क्योंकि हम चाहते हैं अर्जुन यहां से आउट हो जाए, फील्ड से आउट हो जाए, अर्जुन दूर चले जाएंगे तभी हमारा जो प्लानिंग सफल होगा। द्रोणाचार्य बोले अगर अर्जुन ना रहे बाकी चार पांडव कुछ नहीं कर सकते, मैं चक्रव्यूह करूंगा, जयद्रथ को गेट में रख दूंगा और उनको स्टॉप कर दो, फिर काम बन जाएगा, जीत जाएंगे। तो प्लानिंग के लिए अर्जुन को आउट करना था, भगवान को सब पता था, उन्होंने जानबूझकर ड्राइविंग करके ले गए, ले गए आगे और बहुत दूर चले गए। अर्जुन के ऑप्शंस ने चक्रव्यूह का चैलेंज कोई नहीं था, अभिमन्यु आया और मारा गया। जब अर्जुन वापस आए, कृष्णा तो सब जानते हैं, कुछ नहीं बोलते थे, आकर के जब कैंप पे पहुंचे, रोना धोना बहुत शोक सागर में पड़े हैं, सुभद्रा तो आकर के बोला क्या आपने, और बाकी उत्तरा भी उनके पुत्र वधु और सभी लोग शोक, क्या हुआ अर्जुन पूछा, ऐसे ऐसे। जब अर्जुन को पता चला उनका एकमात्र बेटा अभिमन्यु मर गया, अभी अभी कह करके इतने रोया, वो गाली दिया कृष्ण को, बोला तुमको सब पता है, मैं जानता हूं, अर्जुन को पता है गीता लड़ाई होने से पहले आके परम धाम परम हम सब जानता हूं, परमात्मा आप ही हो। तो बोला आपको नहीं पता था क्या, भगवान कुछ नहीं बोल रहे, पता तो था आपने सब कराए, कराए तो सही, क्यों ऐसा कराए, अरे वो सुभद्रा अर्जुन, सुभद्रा भी बोलते, बोले भैया आप कितने प्रेम कर रहे थे, कैसे हम किसे मरवा डाले, मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो मार दिए, आप ही ना होते वो कैसे कर दिए होते, आपका सैंक्शन ना होता ये वीर उनको मार सकते, आप अपने प्रिय अभी को कैसे मरवा डाले। सुभद्रा भी रो रहा था, पत्नी के रोना देख करके अर्जुन भी ऐसे होते थे, और बिल्कुल गाली दिए, बोले तुम मेरे कैसे सखाओ, एक बेटा को तुम्हें बिल्कुल 12 साल का उम्र है, ऐसे मर इतने दुखी हो गए, बोले मैं वो लड़ूंगा ना, कुछ नहीं कर छोड़ जाए कुछ नहीं, इतने अभिभूत हो गए शोक में। वो भी शोक करने का भी भगवान बोलते हैं, वही बुद्धि देते हैं, शोक करो और शोक करो, हाइडोज दिखाओ, वो भी करते हैं क्योंकि अंदर में कंट्रोलर रेगुलेटर उनके हाथ में है ना बाहर से समझाते हैं तो इतने शोक किया तो बिल्कुल बोले और लड़ाई युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन ऐसे हाल हो गया, आप काल के युद्ध कैसे होगा अर्जुन के बिना। भगवान बोले कोई बात नहीं, बहुत दुख को लिया ना, चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी की दिला दूंगा। हाँ दिला देंगे, हम जानते हैं क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वो कर सकते हैं, उनको कौन सा, गुरु पुत्र मर गया था कोई सालों से जो स्टूडेंट कैरियर में जो बोले आए थे जम लोग से उठा करके, तो ये अभिमन्यु को नहीं ले पाए कौन सा बड़ी बात है, वो तो फ्रेश मरा, वो तो कोई सालों में उठा के ले आए थे उनको बोले उनको तो वो कर सकते हैं असंभव कुसम। तो दोनों पति पत्नी अर्जुन और सुभद्रा दोनों बैठ गए, बोले चलो भैया सखा हमको दिला दो हमारे बेटा, बोले चलो। रात हो चुका था रो रो करके, उस दिन पूर्णिमा के रात था, उनको ले गए एकांत में, बोले मैं दिला दूंगा आप सब शांति में रहो। एकांत में ले गए, निर्जन एक पड़े में, तो बिल्कुल फुल मून था नाइट। अब बोले देखो देखो तुम्हारा भी, बिल्कुल जो उनको बोले देखो दोनों को देखे, अभिमन्यु बैठा है चंद्रलोक में, बिल्कुल वही बैठा है। अब बोले अभी बेटा अभी बेटा अभी आ जा रहे बेटा, अब मां भी बड़े प्रेम से बुला रहा है, पिताजी भी बुला रहे हैं, बेटा तू तो क्यों बैठा दूर, आ जाओ, तेरे लिए हम कितने रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, आ जा बेटा तो भगवान ने उनको वॉल्यूम बढ़ा दिया, उनका जो बोली आ रहा था चंद्रलोक से एक पता नहीं लगा दिया हो कान फने से सुन सके उसको, उन दोनों को सुनाई पड़ा, तो सुनाई पड़ा। अभिमन्यु बोल रहा है कहे को बोल रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम हो, शर्म नहीं आता आपको, मैं देवता हूं चंद्रलोक के उपदेव हूं, अरे तुम हमारे माता पिता होने के लायक हो, बेशर्म कहेंगे, तुम्हें शरीर कैसा गंदा है मनुष्य है, तुम मेरे माता पिता लायक हो, अरे मेरा कोई गड़बड़ी था, मैं अभिषेक कारण थोड़ा दिन 12 साल के थे ये पनिशमेंट में गया था, आप मुझे मान लिए,
मेरा बेटा अभी, अरे क्या सकते हैं यार, इससे दो चार डोज वाला बात कर दिया, दोनों पति पत्नी मुंह मोड़ करके कभी नहीं देखेंगे, ऐसा बदमाश है, हम उनके लिए घंटों रो रो के रात बिता दी, ऐसा है, सारे आसक्ति चौपट मिनट में ऐसे काट। भगवान जानते हैं कैसे आसक्ति को बढ़ाना है, कैसे घटाना है, उनको पता है, अब उन्हीं के द्वारा बात कराए खत्म। अब चित्रकेतु महाराज के शिष्यकंत पढ़ेंगे, उसको भी ऐसे करा दिए नारद जी ने, जहां बहुत आसक्ति रहता है उसी से काम कराओ खत्म। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के बेटे से भी इसे बात करा दिए, अरे जो उनके पत्नी रो रहे थे, बोले जा तो क्या हम रो रहे हैं, किस लिए, ये हमारे सब अज्ञान में हम रो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखेंगे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का है नहीं, था नहीं, हो भी नहीं सकता, और केवल भगवान हमारे थे, हैं और रहेंगे ही, और उनको छोड़कर हम ही फंसे। तो इसी की बातें कहते हैं, और जमराज जी उनको समझाते बोलते हैं कि आप ये रोध हो करो मत, क्योंकि ये जिसको अपमान रहे थे, जो प्राण था वही बोल रहा था, देख रहा था, वो चला गया, वो प्राण भी जड़ है, वही देखने सुनने वाला नहीं, ना इस लोके बोलते ना श्रोता ना अनुभक्तायं मुख्य इत्र महासुनो, बोले जो महान प्राण वैव जो मेन जो है महासुनो, जो महाप्राण मुख्य प्राण, वो भी जड़ है, अचेतन है, वो भी बोलने सुनने वाला नहीं है। तो कौन है, जब प्रश्न उठेगा, न जस्तु ही यह इंद्रियवान आत्मा, जिनको आप इंद्रियवान करके मानते हैं, जीवात्मा जो है वही देखने वाला बोलने वाला सुनने वाला, क्योंकि वो चेतन है, यही है। अब वो सच स मतलब वो जीवात्मा, अन्य वो अलग है बिल्कुल, किससे अलग है, ना प्राण देह यो हो, वो प्राण से भी वो देह से भी दोनों से अलग है, बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल असंग है, बिल्कुल अलग चीज है वो आप उसको जानते ही नहीं, कैसे अलग है, ना वो नित्य वस्तु, आप अनित्य है, अविनाशी अविनाशी है, बिल्कुल अलग है। और अच्छा यही जीवात्मा जो है वही देखने वाला सुनने वाला वो है, लेकिन वो भी देखना सुनना बोलना आपने हिसाब से नहीं कर सकता। कई हम संसार में देखे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर परमात्मा का सैंक्शन ना हो ये स्विच अप कर दे, मुंह रहेगा, जीभ रहेगा, बोलने की इच्छा रहेगा, बोल नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे संसार में है गूंगे आदमी, उनका मुंह भी है, जीवा भी है, बोलने की इच्छा भी है, हूं कर रहे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रमाण है कि भाई कंट्रोलर कोई और है, और इतने हमको मदद कर रहा है सब कुछ, तो हमारा कर्तव्य केवल उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं के लिए कर्म करना चाहिए, उन्हीं का हो जाना चाहिए। इसी को वही शिक्षा देते हैं, माम एकम शरणं व्रज, अगर हम ऐसा करें तो सदा के लिए उनके पास जाकर सुखी रहेंगे, है ना। जो जीवात्मा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है वह शरीर के भीतर सुख पूर्वक निवास कर सकता है, यह लोक परलोक, यहां भी सुखी रहेंगे वहां भी सुखी रहेंगे। करना के बोले कि उन्हीं के शरण में रह करके उन्हीं के लिए सब कुछ, रोना सोना खाना धोना एवरीथिंग, प्रत्येक इंद्रिय के चेष्टा चालना केवल उन्हीं के निर्देश उन्हीं के लिए होना चाहिए, उनके खुशी के पास, यही है सुख के सूत्र। हरे कृष्ण। कोई कमेंट क्वेश्चन, हाँ जी।
महाराज आपने ये कथा के लास्ट में कह रहे थे कि जो डिस्ट्रेस है, मतलब भगवान क्यों उसको गड्ढे में वो गिर रहे थे, क्यों बचा रहे, क्योंकि भगवान चाहते हैं तो पूरा त्रस्त हो जाए भौतिक संसार से भगवान की शांति। तुम्हारा जो प्रश्न है, जैसे भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के लोग उनके शरण में आते हैं, तो जो डिस्ट्रेस है, अर्थो है, बातों है, तो वो भगवान की शरण में तो आ जाते हैं जिस समय वो वैसा डिस्ट्रेस होता है, लेकिन बाद में भक्ति जब वो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनको भगवान से प्रेम तो नहीं है, तो वो कैसे डिस्ट्रेस के बाद एक बार जब वो भक्ति साधना में आ जाते हैं तो वो कॉम्प्लेसेंसी
उसी को अभ्यास करते करते निकलेंगे, वही प्रभु ही मदद करेगा। एक बार उनके ओर आने के लिए प्रयास करो, इच्छा करो,
बाकी सारे सुविधा वो प्रदान करेंगे। वही तो कहते हैं ददामी बुद्धि योगं तम जे नमाम उपयन्ति ते, मैं ही उनको बुद्धि दूंगा जैसे मेरे पास आए। लेकिन कंडीशन क्या है, सततम कीर्तन तुम मेरा भजन करो हमेशा, तो मैं हूं सभी को व्यवस्था करूंगा अंदर से बाहर से, है ना। और कुछ? यस हुई स्पीकिंग। हाँ जी
हाँ
अब सरेंडर के लक्षण तो, शरणागति के लक्षण तो छह लक्षण बताया गया शास्त्र में, लेकिन अभी इतने डिटेल हम नहीं जाएंगे। केवल आप भगवान के वचन मान करके इतना ही करो, हम दुर्बुद्धि दुर्गुण से क्या कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर यथाशक्ति इसको जप करो, बाकी सारे बुद्धि अपने आप आ जाएगा अंदर से।